તારીખ 13/7/1991 શ્રી સમયસર ગાથા 201 અને 202 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 55.
201 અને 202 ગાથાનો ભાવાર્થ. ગાથાનો વિષય છે કે જે જીવ રાગી છે, એટલે કે રાગને ભલો જાણે છે. રાગી છે એનો અર્થ એ છે કે રાગના કોઈ એક કણને, કોઈ એક અંશને ભલો જાણે છે, સારો જાણે છે, મમત્વ કરે છે. તે જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ કેમ હોય? તે જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય જ નહીં એમ કહેવા માટે એમ કહે છે કે તે જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ કેમ હોય કે તે જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ ન હોય. આ ગાથાનો પ્રસ્તુત વિષય છે. ભાવાર્થમાં એમ કહ્યું કે રાગી એટલે અહીંયા અજ્ઞાનમય રાગ લેવો. અજ્ઞાનમય રાગ એટલે કે જે રાગને રાખવા જેવો, કરવા જેવો, વધારવા જેવો, આદરવા જેવો એવું કાંઈ પણ માને છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ તો રાગને રોગ જાણે છે. અહીંયા સમ્યક દ્રષ્ટિ તો કર્મના ઉદયથી થયેલો રોગ જાણે છે. એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિને રાગ છે ખરો, પણ એ રાગ કયા સ્થાનમાં છે? રોગના સ્થાનમાં એને જાણે છે અને તેને મટાડવા જ ઈચ્છે છે. રોગની શું દશા હોય કે આ કેમ મટે? જે રોગ લાગુ પડ્યો હોય આ કેમ મટે એ પરિણતિ સતત રહ્યા કરે છે. સંસારમાં રોગિષ્ટ જીવને જે રોગ હોય એ કેમ મટે એની સતત પરિણતિ રહ્યા કરે છે. એમ સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ આ રાગરૂપી રોગ કેમ મટે એની પરિણતિ સતત જ રહે છે. તેથી તેને મટાડવા જ ઈચ્છે છે. પહેલા પેરેગ્રાફમાં અડધેથી વચ્ચેથી લીધું. તે રાગ પ્રત્યે તેને રાગ નથી, જરા પણ રાગ નથી. રાગ પ્રત્યે તેને જરા પણ રાગ નથી અને કોઈ પણ પ્રકારના રાગ પ્રત્યે એને રાગ નથી. વળી સમ્યક દ્રષ્ટિને રાગનો લેશ માત્ર સદભાવ નથી એમ કહ્યું છે અહીંયા. તેનું કારણ આ પ્રમાણે છે, સ્પષ્ટીકરણ આપે છે. એમ કે રાગ તો દેખાય છે છતાં લેશ માત્ર નથી એમ શું કરો, શા માટે કહ્યું? કે સમ્યક દ્રષ્ટિને અશુભ રાગ તો અત્યંત ગૌણ છે. હિન્દીમાં લઈએ જરા. સમ્યક દ્રષ્ટિ કો અશુભ રાગ તો અત્યંત ગૌણ હૈ, ઓર જો શુભ રાગ હોતા હૈ ઉસકો વો જરા ભી અચ્છા ભલા હૈ, અચ્છા હૈ એસા સમજતા નહીં હૈ. મેને સમ્યક દ્રષ્ટિ કો તીવ્ર અશુભ રાગ તો હોતા હી નહીં, તીવ્ર રસ સે નહીં હોતા. તીવ્ર મેને ક્યા, તીવ્ર રસ સે નહીં હોતા, મંદ રસ સે હોતા હૈ. હોતા હૈ તીવ્ર હોતા હૈ તો રસ મંદ રહેતા હૈ, એસી બાત હૈ. દ્રષ્ટાંત એસા હૈ કે જૈસા કોઈ ઘાસ હૈ ઉસમે અગ્નિ લગતા હૈ તો બહુત બડા બડા અગ્નિ લગતા હૈ, ઉસકી જ્વાલા જો હૈ એકદમ બઢ જાતી હૈ, ફિર ભી ઉસમે તાકત નહીં હૈ, અલ્પકાલ મેં વો અગ્નિ શાંત હો જાતી હૈ. ઓર લકડા હૈ ઉસમે અગ્નિ લગતી હૈ, જ્વાલા નહીં દીખતી હૈ, લેકિન બહુત ઘંટે તક ઉસકા જો ટુકડા હૈ ઉસમે અગ્નિ ચાલુ રહેતી હૈ. વો અગ્નિ બડી નહીં દીખતી હૈ ફિર ભી બડી હૈ. ઓર ઘાસ કી અગ્નિ બડી દીખતી હૈ ફિર ભી ઇતની બડી નહીં હૈ. ઉસી અનુસાર, ઉસી દ્રષ્ટાંત કે અનુસાર સમ્યક દ્રષ્ટિ કો અશુભ રાગ હોતા હૈ, કભી તીવ્ર ભી દીખતા હૈ તો ભી વો ઘાસ કે અગ્નિ કે સમાન હૈ. ઓર મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો મંદ અશુભ રાગ યા મંદ શુભ રાગ દીખે તો ભી વો લકડે કી અગ્નિ કે સમાન હૈ, જલ્દી બુઝાને વાલી ચીજ નહીં. ક્યો કે વો અચ્છા જાનતા હૈ, વો તો અચ્છા જાનતા હી નહીં, વો તો મિટાના ચાહતા હૈ. યહી હાલત હૈ દોનો કી, फुर्ती सूटी। इसलिए अशुभ राग तो उसको गौण है, तो मैंने गौण है, मैंने होता है भी कम, होता है तो भी कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उनको अशुभ प्रकृति का बंद कम है, शुभ प्रकृति का बंद भी ज्यादा होता है। तीव्र था पण तीव्र रस वाला न था, वेद आपणे शुं पड्यो, तीव्र रस वाला न था, तीव्र थाय खरो, एको तो लड़ाई भी हो जाती है तो सब तो तीव्र दिखे। ये कह सकते हैं कि इसका सबूत क्या है, उसका रस मंद है, उसका कोई सबूत है क्या है इसका? देखिए बाहुबली जी, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के बीच में लड़ाई हुई और दोनों कहाँ तक पहुंच गए, एक दूसरे का नाश हो जाए वहां तक कसाय तीव्र हो गया। और बाहुबली के बाहु मैंने हाथ इतनी ताकत थी कि इनकी कोई प्रहार किसी को लग जाए, बाहुबली का हाथ का प्रहार किसी को लग जाए तो सामने कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सके, मरी जाए, उसका आयु पूर्ण होने वाला है, तब उनका बाहु का प्रहार लगे। तो उनके पास तो कोई शस्त्र नहीं रहा लड़ते लड़ते, तो उन्होंने गुस्सा तो था हाथ मारने के लिए हाथ कर दिया, लेकिन रस नहीं था उसमें, तीव्रता आ गई अशुभ भाव में लेकिन रस नहीं था। तो टूटने में कितनी देर लगी कि वो हाथ का प्रहार हुए उसके पहले वो कसाई टूट गया। अरे ये क्या हो रहा है, किसके वास्ते ये? अरे हम तो सगे भाई और ऐसा आपस में ऐसे परिणाम धिक्कार है, इस संसार को धिक्कार है, ऐसा करके उसी वक्त वो हाथ से केस लोच कर लिए, पूरा संसार का त्याग करके जंगल में चले गए। तो ये सबूत है इसका कि तीव्र कषाय हुआ था फिर भी उसमें रस नहीं था तो टूट गया, अगर उसमें रस होता तो टूटता नहीं, ये इसका सबूत है। इसलिए ज्ञानियों को तीव्र कषाय होता है तो भी उसमें रस तीव्र नहीं आता, रस छूट जाता है, रस नहीं है इसलिए कसाई भी छूट जाता है उसका, रस है। ये जो अपने धवल शास्त्र है षटखंडागम की टीका, उसमें तो वीरसेन स्वामी ने रस को कषाय शक्ति कही है, क्या कहा है, कषाय शक्ति ऐसा नाम दिया है, कषाय और कषाय शक्ति। और अपने तो वो बात लिया है तत्वानुशीलन में कि हर परिणाम की शक्ति उस परिणाम के रस में होती है, अशुभ भाव हुआ और रस तीव्र हुआ तो बहुत ताकत वाला परिणाम हो गया, शुभ भाव हुआ और रस बढ़ गया तो उसमें शक्ति बहुत हो गई, और शुद्ध परिणाम हुआ और रस तीव्र हुआ तो उसमें शुद्धता की शक्ति बहुत बढ़ गई। तो परिणाम की शक्ति परिणाम रस में होती है, ये इसका जनरल डेफिनेशन है, सामान्य व्याख्या वो है कि परिणाम की शक्ति कहां, उस परिणाम के रस में। तो कषाय के जो परिणाम है उसकी शक्ति कहां, कि कषाय रस में, शुभ हो तो शुभ, अशुभ हो तो अशुभ। इसलिए कषाय भाव में तीव्र रस से परिणमन नहीं करना, ये ज्ञानियों की शिक्षा है। उदय आएगा चाहे जैसा उदय हो, लेकिन सतर्क होके जागृत रह करके मंद रस से प्रवेश करना, प्रवृत्ति में प्रवेश ही मंद रस्य करना, जैसे हम खाने खाने को बैठते हैं तो भोजन शुरू हुए इसके पहले जागृत हो जाना कि कहीं किसी आइटम पे हमारा रस बढ़ नहीं जावे, तो पहले से ही सतर्क हो जाना। फिर क्या खाया नहीं खाया फिर ध्यान रहने वाला नहीं है, और ध्यान गया तो रस तीव्र हो जाएगा, रस तीव्र हो जाएगा तो ध्यान बहुत मंदा जाएगा। तो ये तीव्र बंध करने का, तीव्र बंध का ये कारण है, और इसका फल भी बहुत दुख है। इसका फल क्या है? बहुत दुख है। अवलोकन करने से रस टूटेगा, रस टूटेगा तो उसकी ताकत टूटेगी, और चारित्र मोह का परिणाम में भी रस जब टूटता है तो दर्शन मोह अविनाभावी रूप से मंद हो ही जाता है। दर्शन मोह का अनुभव भी टूटता है तो ज्ञान में स्वभाव ग्रहण करने की जो ज्ञान शक्ति है उसका विकास होता है, उसकी भूमिका तैयार होती है। तो स्वभाव को ग्रहण करने में ज्ञान तैयार हुआ तो सम्यक तो समीप आएगा, अब आत्मा के समीप आएगा। इसलिए कहीं भी तीव्र रस से कोई भी बाह्य प्रवृत्ति, चाहे शुभ की हो चाहे अशुभ की हो, नहीं हो, ऐसा ख्याल रखने का है। अपने तो प्रतिष्ठा पहले ये बात बहुत चली थी, मैं कुछ 15 दिन पहले आया इधर तो ये बात काफी चली थी, एक बड़ा शुभ प्रसंग आने वाला है और हम लोगों को उत्साह से काम करना है। फिर भी ये उत्साह में हमारा कहीं भी रस बढ़े ऐसा होना नहीं चाहिए, मंद रस से प्रवृत्ति करो। परिणाम का तपास होने से क्या होता है कि रस टूट जाता है, उसी वक्त टूटता है, पूछना नहीं पड़ता कि रस टूटा कि नहीं टूटा, अनुभव होता है इसका, तो अपने अनुभव से ये मालूम पड़ जाता है कि ये पद्धति यथार्थ है या यथार्थ नहीं है, वो उसी वक्त मालूम पड़ जाता है। किसी को पूछना नहीं पड़ता कि ये कार्य पद्धति ठीक है या ठीक नहीं है, क्योंकि अपने को अनुभव होता है। बताओ ना, न करवी अशुभ मा तो न करवी, पर शुभ मा न करवी। क्यों? कि शुद्धता में जाने के लिए जितना अशुभ रस प्रतिबंधक है उतना ही शुभ रस प्रतिबंधक हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबंध तो दो, प्रतिबंध के हिसाब से तो दोनों का एक ही स्थान है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। नहीं, ऐसा है कि जब ये नुकसान है, जब ये कषाय रस, दोनों कषाय रस है, कषाय रस ही आत्म रस से विरुद्ध है, तो हम नुकसान का व्यापार क्यों करें, नुकसान का धंधा क्यों करें? कोई व्यापारी ऐसा थोड़ा कहेगा कि मुनाफा नहीं हो तो नहीं हो, हमें तो व्यापार करना है भले ही नुकसान हो, ऐसा कोई बोलेगा थोड़ा है? कि नहीं, धंधा करना है व्यापार करना है तो मुनाफा मिले तो करना है, वरना बैठे रहना है, लेकिन नुकसान का व्यापार तो करना ही नहीं है। इसलिए हमें शुद्धता नहीं हुई इसलिए अशुद्धता का व्यापार ज्यादा कर ले वे, ये बात तो ठीक नहीं है। उसमें एक अभिप्राय का दोष हो जाता है। किस तरह का? कि अपने को शुद्धता तो नहीं उत्पन्न होती है तो शुभ ज्यादा करे, थोड़ा शुभ ज्यादा कर ले तो एक करते करते कुछ शुद्धता हो जाएगी, ऐसा अनजाने में भी ये अभिप्राय पैदा हो जाएगा कि ये करते करते कुछ लाभ हो जाएगा। कषाय मंद होते होते इतना मंद कर देंगे, इतना मंद कर देंगे तो अभाव हो जाएगा, और शास्त्र पढ़ कर करके इतना पढ़े, इतना ज्यादा पढ़े कि बहुत ज्ञान बढ़ जावे, ये दोनों लाइन बिल्कुल उल्टी है। बाह्य क्षोभ से ज्ञान बढ़ा, ये उल्टी लाइन है। और कषाय मंद होने से शुद्धता के न समीप पहुंचे, ये अभिप्राय उल्टा है, दोनों उल्टा अभिप्राय है जी। सहजे आ जाए तो भी रस तीव्र नहीं है, इसलिए आत्म जागृति होनी चाहिए। अपनी तो जागृति कहाँ होनी चाहिए कि हमारा रस कहीं तीव्र न हो। तो अपन वो बात करते थे, हम लोगों को तो याद होगा कि जैसे हमारे वहां दान का प्रकार ज्यादा रहता है, प्रतिष्ठा के प्रसंग में क्या है कि विशेष समर्पण भाव आता है। तो भगवान हमारे यहाँ पधार रहे हैं, त्रिलोकीनाथ का पधारना हमारे आंगन में हुआ, हमारे घर पे हुआ, तो करो जितना हो सके उतना समर्पण कर दो, ज्यादा से ज्यादा। तो वहां इतना सतर्क रहना है कि हमने कुछ किया ही नहीं, ये पुद्गल की चीज है, पुद्गल पुद्गल का काम करता है, हमको तो भगवान का स्वरूप के प्रति बहुमान है, स्वरूप का आदर है, पर उनका स्वरूप देख करके हमारा स्वरूप का आविर्भाव हमें करना है। इसलिए ये जो पैसे आदि तुच्छ पदार्थ है उनको समर्पण कर दो, ये कोई बहुत बड़ा पदार्थ है इसका समर्पण कर दो, ऐसा नहीं लेना है। वरना क्या हो जाएगा कि हमने बहुत ऐसा किया, हमने बहुत ऐसा किया, ऐसा अहम भाव, उस रूप जो शुभ अशुभ भाव, ये शुभ के साथ अशुभ आए बिना रहेगा नहीं, अकेला शुभ भी नहीं रहेगा वहां तो। इसलिए दर्शन मोह के मंदता का और अभाव का कौन सा कारण बनता है, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति में, चाहे शास्त्र स्वाध्याय हो, चाहे प्रतिष्ठा का प्रसंग हो, कुछ भी, चाहे पूजा भक्ति का प्रसंग हो, हमारा दर्शन मोह कैसे कटता है वो बात हमें देखनी है। चारित्र मोह पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, दर्शन मोह पर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? कि सर दर्शन मोह कमजोर हो जाएगा, इसका अनुभाग मैंने रस टूटेगा तो वो दबेगा, बहुत बलवान वो है, सबसे बलवान वो परिणाम है दर्शन मोह के, तो वो दबेगा तो उपशम होगा। पहले तो उपशम ही होता है, पहले अभाव नहीं होता, क्षय नहीं होता, क्षोभशम नहीं होता। कौन दबेगा? कि जो कमजोर होगा वो दबेगा, जो बलवान होगा वो तो दबने वाला है ही नहीं, इसलिए उसको कमजोर करते जाओ। पात्रता किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? कि पात्रवान जीव को, पात्रता वाले को प्राप्त होता है। पात्रता किसको कहते हैं? क्या मंद कषायी को पात्रता कहते हैं? कहते कहेंगे हम कि नहीं, कषायी मन की मंदता का विषय नहीं है पात्रता। दर्शन मोह की मंदता जिसको हुई है वो पात्र है, पात्रता में वो बात है। होवे तो होवे, हमारा उस पर इतना ध्यान नहीं है। दर्शन मोह मंद होने से चारित्र मोह तो स्वतः ही मंद हो जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो भी, वो तो एडिशनल एडवांटेज है। ज्यादा एक जैसे सब्जी लेते हैं तो कोथमीर मुफ्त में देते हैं, मिर्च मुफ्त में देते हैं, ऐसे वो तो एक मुफ्त में मिलने वाली चीज है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि वो तो शुभ भाव से होता है और ये शुभ भाव से नहीं होता है। ये श्रद्धा ज्ञान की प्रवृत्ति के साथ संबंध है। दर्शन मोह का संबंध किसके साथ है? श्रद्धा ज्ञान के साथ होता है। ना छह चारित्र नो दोष, पर राग रस और दर्शन मोह को अविना भावी संबंध है। राग रस तीव्र होता है तो दर्शन मोह तीव्र हो जाता है, राग रस मंद रहता है तो दर्शन मोह मंद रहता है। इसलिए जो दर्शन मोह को नहीं समझते उसको राग के रस से, चारित्र मोह के रस से समझाने में आता है। ऐसा एक समझाने की भी पद्धति है। देखें अपन गुरुदेव के प्रवचन में वो बात आती है, गुरुदेव से के वचनामृत है, गुरुदेव से के वचन उन्नीस नंबर का वचनामृत है। ये वचनामृत समय सार 144 गाथा के प्रवचन में से पसंद किया गया है। वो भी 144वीं गाथा के प्रवचन कौन से हैं? 1998 में जो प्रवचन हुए थे और पूज्य बैंसरे ने जो लिखे थे और जो इसके चार भाग आज छपे हुए हैं, वो प्रवचन में से राजकोट प्रकाशन हुआ 2000 के साल में और प्रवचन हुआ थे राजकोट में 1998 में। अब क्या कहते हैं, विषय वो चल रहा है कि जो जीव सम्यक दर्शन के समीप है वो जीव की ज्ञान की प्रवृत्ति में स्वरूप निश्चय होता है। जो स्वरूप निश्चय का भावभाषण का प्रकरण अपने यहाँ चर्चा में चलता है, हैदराबाद जब मैं आता हूँ वो प्रकरण तो थोड़ा बहुत चलता ही है, तो ये प्रकरण यहाँ 144 में चला है, आचार्य महाराज के वचनों में चला है, गुरुदेव ने उसको बहुत खोला है। वहाँ तो एक ही पंक्ति पड़ी है लेकिन गुरुदेव ने उसको बहुत खोला है। तो क्या कहते हैं कि गुरुगम से बराबर जान करके, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है उसमें, गुरुगम से बराबर जान करके ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करना, क्योंकि गुरुगम बिना वो बात समझ में आने वाली नहीं है। ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करना, निर्णय होना यही पात्रता है। देखो पात्रता का संबंध ज्ञान के साथ लिया, कसाई की मंदता के साथ नहीं लिया गुरुदेव ने, ये निर्णय हुआ यही पात्रता है, ये उत्कृष्ट पात्रता है। ज्ञान में जो भाव भाषण आया, ज्ञान में जो स्वरूप लक्ष्य हुआ, यही उत्कृष्ट पात्रता है। कसाई है वहां तो मंद रहता ही है लेकिन उसको पात्रता नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे। और आत्मा का अनुभव यह उसका फल है, ऐसा जो भाव भाषण है स्वरूप निश्चय है वो कारण है और आत्मानुभव इसका कार्य है। ऐसा निर्णय करने की जहां रुचि हुई, निर्णय के पहले, अब निर्णय करने के लिए जो उत्सुक हुआ तैयार हुआ, वहां अंतर में कषाय का रस मंद पड़ जाता है। क्या लिखा है देखो, 1998 में 50 साल पहले की बात हुई ना, 49 चलता है, 48 में 50 पूरा हुआ, 51 साल पहले वो बात कही है कि जब निर्णय करने की रुचि हुई कि मेरे स्वरूप का निश्चय होगा तब अनुभव होगा, इसके पहले होगा नहीं, क्योंकि वही कारण है। श्रीमद जी ने उसको दूसरा संकेत कहा है 751 पत्र में, तीन संकेत कहा आत्मसिद्धि में, मैं दूसरा संकेत ये कहा, और यही सम्यक दर्शन का अनन्य कारण, एकमात्र कारण। આપણા જોવામાં નથી, આપણા જોવામાં નથી, પણ ઇનડાયરેક્ટલી વાત આવી ગુરુદેવના પ્રવચનમાં, કેમ કે એમણે ત્યાં એમ કહ્યું કે તીન સંકેત હૈ ઉસમે જો પહેલા સંકેત હૈ વો દૂસરા સંકેત કા કારણ હૈ, दूसरा संकेत वो तीसरा परमार्थ समय निर्विकल्प दशा सर्व समेत का कारण है। इसलिए हमने कारण में कार्य का उपचार करके संकेत बोला है, वास्तव में संकेत नहीं, ऐसा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। और ये तीनों दशा आदर करने लायक है, सत्कार करने लायक है, मान्य करने लायक है और भक्ति करने लायक है, ऐसे चार शब्द रखे हैं। तो सम्यक दर्शन जिसको नहीं हुआ लेकिन पहले में किसी एक भी संकेत हुआ हो या दो संकेत हुआ हो, तो उसका आदर करना, उसको मान्य करना, उसका सत्कार करना और उसकी भक्ति करना। और एक बात अधिक लिखी है कि ये तीनों संकेत वितराग पुरुष ने मान्य किए हैं, मैंने कहा इसलिए आप मान लेना, ऐसा नहीं कहा। तो वो तो बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे, हमने जितना शास्त्र पढ़ा इससे भी उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े थे, तो उन्होंने ये बात लिखी है कि ये तीनों संकेत वितराग पुरुष ने मान्य किए हैं। तो वहां उसने सर्वज्ञ को बीच में साक्षी रख लिया है। बाकी एक बात समझना है कि एक ज्ञानी कोई बात करता है तो अनंत ज्ञानी यही बात करेंगे, एक ज्ञानी ने किया है और दूसरे ज्ञानी ने तो नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। एक ज्ञानी ने कहा, वो अनंत ज्ञानी ने कहा है। क्यों? कि अनंत ज्ञानियों का, तीनों काल के ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है, दूसरा अभिप्राय होता नहीं है। तो ये बात हमेशा ख्याल में रखने की है। जैसे हमारे लोग शंका उठाते हैं कि ये कारण शुद्ध पर्याय की बात गुरुदेव ने निकाली, लेकिन और तो कहीं जगह नहीं मिलती है, दूसरे शास्त्रों में नहीं मिलती, एक नियम सार में ही मिलती है और एक ही जगह मिलती है, 15 गाथा के अलावा कहीं फिर उल्लेख नहीं मिलता है। तो कृपालु देव ने, श्रीमद जी ने तो अधिक बात कहा है कि कोई ऐसी विशिष्ट बात होती है और विशिष्ट पात्र के लिए होती है तो क्वचित ही आती है, तो बार बार नहीं आएगी। इसलिए इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्या? इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका कीमत अधिक है, ऐसा समझना, ऐसा करके मार्गदर्शन दिया है। तो इसलिए एक ज्ञानी ने कहा, वो अनंत ज्ञानी ने कहा। इधर क्या कहा कि आत्मानुभव का, आत्मानुभव इसका ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना। क्यों? कि आत्मानुभव को इसका फल है, तो कारण कार्य हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अमरचंद्राचार्य ने क्यों 144 में वो बात लिया? 144 गाथा तो पक्षांति क्रांत की है। जो जीव पक्षांति क्रांत होकर के निर्विकल्प स्वानुभव करता है, वो कैसे करता है, वो गाथा है। तो निर्णय की बात गाथा में तो है ही नहीं। फिर टीकाकार आचार्य महाराज ये बात क्यों उठाई बीच में? कि टीकाकार आचार्य महाराज की पद्धति यही है कि जो बात पूर्वाचार्य ने प्रतिपादित की है उसका प्रतिपादन कार्य का कारण का लॉजिक के साथ करना है, ठोस प्रतिपादन वो करते हैं। तो गुरुदेव ये कहते थे कि भले ही गाथा में नहीं हो, लेकिन गाथा में जो कस पड़ा है वो अमृतचंद्राचार्य जैसे गैया को कोई बाई दूध निकालती है ऐसे निकालते हैं, बहुत बहुत सुंदर निकालते हैं, ऐसा करके प्रशंसा कर देते हैं कि गाथा के भाव कितने खोले अमृतचंद्राचार्य ने। तो निर्णय वाली बात अमृतचंद्राचार्य ने कि प्रथम तो ऐसा करके, ये अनुभव होने के पहले आत्म स्वभाव का निर्णय करना, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, इस पर ये बात चल रही है और इसमें से ये पैराग्राफ लिया है। हमने देखा है, मूल प्रवचन देखा है, वो प्रवचन अपने गुरुदेव के शताब्दी अंक जो आत्मधर्म का है उसमें छपा है। सारे अंक में एक ही प्रवचन प्रसिद्ध किया है, प्रकाशन किया है, और ये 144 गाथा वाला किया है और इसमें ये बात है अक्षरशः। तो बात तो मूल आगम में पड़ी है, वही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी कोई कल्पित बात नहीं करते, ज्ञानी का मार्ग ही वास्तविकता पर चल होता है, कल्पना पर कभी होता नहीं है, बहुत वास्तविक ठोस नक्कर ये मार्ग है, कोई काल्पनिक मार्ग नहीं है बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि शुभराग होता है उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, इसलिए ये तो कहते हैं कि शुभराग होता है लेकिन ज्ञानी बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। तो बिल्कुल अच्छा ज्ञानी नहीं समझता तो मुमुक्षु अच्छा समझे, तो ज्ञानी से विरुद्ध प्रवृत्ति करे तो ज्ञानी कैसे होएगा? मुमुक्षु तो वो है कि जिसको ज्ञानी होना है उसी को मुमुक्षु कहेंगे, भले हुआ नहीं है लेकिन होना है तो वो क्या करेगा कि ज्ञानी का अनुसरण करेगा। अगर ज्ञानी शुभराग को अच्छा नहीं जानते तो मुमुक्षु भी अच्छा नहीं जानते। मुमुक्षु कोई विरुद्ध चले इसका नाम मुमुक्षु है क्या? क्या अनुकूल चले इसका नाम मुमुक्षु है? तो शुभराग इतना नहीं हुआ तो वो तो क्या कोई एक अर्घ चढ़ावे और कोई आधा घंटे तक पूजा करे तो आधा घंटे वाले की पात्रता बढ़ गई क्या? ऐसा होता है क्या? कोई 101 रुपया दान दे, कोई 1 लाख रुपया दान दे तो क्या 1 लाख रुपये वाले की पात्रता बढ़ जाती है क्या? कोई एक वचन शास्त्र का पढ़े और कोई पूरा ग्रंथ पढ़े तो पूरा ग्रंथ पढ़ने वाले की क्या पात्रता बढ़ जाती है क्या? भले उपयोग रहा लेकिन श्रद्धा ज्ञान में क्या हुआ? पात्रता किस पर आधारित है? शुभोपयोग पर आधारित है या श्रद्धा ज्ञान में निर्मलता हुई उस पर आधारित है? बस उसको अपने को फाइनल करना है। पात्रता हम किसको कहते हैं? हमारे एक बात चली थी, आपके यहाँ पात्रता की चर्चा भावनगर में बहुत होती है, हमारे तो स्वाध्याय में तो बहुत होती है। हमारे तो कोई भी बात चलती है तो सीधा प्रश्न आता है कि दर्शन मुख का क्या स्थिति है इस वक्त, बताइए हमको। दर्शन मुख का समझना है कि दर्शन मुख कैसा होता है, वहां क्या क्या होता है, तीव्र होता है या मंद होता है। कहीं से भी कोई भी कोने में से ये प्रश्न आ जाता है तो विषय ज्यादा चलता है। फिर कोई नहीं ये कहा कि आपके स्वाध्याय में तो मंद कषाय की बातें ज्यादा चलती है, हमारे को ज्ञानियों की बात चलती है। हमारे हम तो बस शुद्धता की बात करो, इसके कोई बात करो नहीं, शुद्ध परिणामों की बात करो, सम्यक दर्शन की बात करो, मुनि दशा की बात करो, केवल ज्ञान की बात करो, शुद्धात्मा की बात करो, इसके पहले की कोई बात नहीं करो। क्यों? कि सम्यक दर्शन के पहले तो शुद्ध भाव ही होते हैं। ये समझ बिल्कुल बहुत स्थूल है। सम्यक दर्शन के पहले चारित्र मोह में शुभ भाव होते हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन में क्या क्या होते हैं इसका क्या? प्रमुख तीन गुण हैं, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। तो आप एक चारित्र की गिनती क्यों करते हो? मुमुक्षु की भूमिका में अकेला चारित्र की गिनती क्यों करते हो कि तो अकेला शुभ राग होता है? श्रद्धा ज्ञान में जो तैयारी होती है उसी के कारण सम्यक दर्शन होता है और स्वान होता है। शुभराग का कोई गिनती नहीं है वहां, और शुभराग तो शुरू से ही, शुभराग हो या अशुभराग हो, अच्छा जानने का सवाल ही नहीं है। वो ज्ञानी की आज्ञा ही नहीं है, गुरु की आज्ञा ही नहीं है कि तुम राग को भला जानो, आज्ञा ही नहीं है। तो ये प्रकरण बिल्कुल अलग है। गुरुदेव ने किसी विद्वान ने पूछा, कभी कोई विद्वान आ गया होगा, गुरुदेव खुद कहते थे इस बात को, नाम नहीं देते थे। हमने किसी को पूछा कि साहब इतने साल से आप समयसार आदि अच्छे अच्छे महान शास्त्र को पढ़ते हो लेकिन सम्यक दर्शन कितने को हुआ? क्या आप तो शुभभाव को दंडा मारते हो? गुरुदेव के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि जो शुभभाव को बहुत फटकारते हैं, दंडा मारते हैं। और ये तो सब सम्यक दर्शन तो इन्हें गिने 1, 2, 4 को हुआ होगा, बाकी तो सब शुभभाव, सबका शुभभाव ही चलता है। बोला ऐसी गिनती नहीं करनी चाहिए, भले ही सम्यक दर्शन 2-4 को हुआ हो लेकिन श्रद्धा ज्ञान में कितने फर्क हो गया, कितने लोगों का फर्क हो गया और कितने को संस्कार मिल जाएगा और कितने संस्कार लेके जाएंगे, ये तुम्हारी गिनती में आती नहीं है बात। तुम तो मोटी दृष्टि से शुभ अशुभ को देखते हो, ये तो शुभ होता है, शुभ होता है, अकेला शुभ नहीं होता है। शास्त्र स्वाध्याय में तो मुख्यतया ज्ञान की प्रवृत्ति प्रधान है, शुभराग की प्रवृत्ति प्रधान नहीं है, ज्ञान की प्रवृत्ति प्रधान है। और ऐसे महान परमागमों में तो ऐसी बात है कि बाह्य ज्ञान है, देखो क्या लिखा है, श्रुत केवल जैसा होता है तो भी हम इसकी गिनती नहीं करते हैं, बाह्य ज्ञान का भी निषेध करते हैं ये परमागम में तो, कि आप किसी भाषा की भभक में तो नहीं आना लेकिन किसी का बाह्य ज्ञान हो तो भी उसमें व्यामोहित मत होना। अंतर ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, उसी का कीमत है। बाह्य ज्ञान का भी जैसे सुभ्रात का कीमत नहीं है, ऐसा बाह्य ज्ञान का भी कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे परमागम में तो ज्ञान की प्रवृत्ति में भी बहिर्लक्ष छुड़ा करके अंतर्लक्ष करवाते हैं, ऐसी ही ज्ञान की प्रवृत्ति है। तो उसमें तो श्रद्धा ज्ञान में इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है कि अगर जीव आगे बढ़े तो स्वरूप निश्चय होकर के, भाव भाषण होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो ये लाइन एक दूसरी है, शुभभाव वाली लाइन दूसरी है, और ये श्रद्धा ज्ञान में आत्मा के अनुकूल फर्क पड़े वो लाइन दूसरी है। हमको वो लाइन पकड़नी है, वो लाइन नहीं पकड़नी है। शुभभाव से पुण्य बंधेगा और वो तृष्णा का घर है बड़ा, उसका फल आएगा, तेरी तृष्णा बढ़ जाएगी, वृद्धिगत हो जाएगी। अभी चला दो दिन से, तीन दिन से यही प्रवचन चल रहा है। और देखिए अपना प्रैक्टिकल लाइफ कि हमारे हिंदुस्तान में पैसे वाले पिछले कुछ साल में ही हुए हैं। हम लोग जिनके पास पैसे हैं उनके पिताजी दरिद्र था, या इनके पिताजी के पिताजी दरिद्र था, या इनके पिताजी दरिद्र था। दो तीन पीढ़ी से तो पैसा ज्यादा पहले था ही नहीं किसी के पास। 1% 2% भी पैसे वाले लोग नहीं थे हिंदुस्तान में। अभी भी 10% के अंडर में है। तो जो पैसे हुआ तो दारिद्र में से तो पैसा मिला है सबको, बहुभाग लोगों को तो पैसा नहीं था उसमें से पैसा मिला। हालत क्या हुई बताइए, पैसे मिलने के बाद क्या हालत हमारी हुई? वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए और वो चाहिए, क्या हालत हो गई है? लाओ 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 लाओ, जैसे बोलो खाओ खाओ करता है भूखा आदमी, ऐसे लाओ 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 हो गया है। तृष्णा और बढ़ती है। हमारा प्रैक्टिकल परिणाम देखे तो क्या होता है कि हमारी तृष्णा ही बढ़ती है, और क्या बोलता पड़ता है, और ले लेवे, और कमा लेवे, और ले लेवे, और कमा लेवे, ज्यादा अधिक कमाए, अनलिमिटेड। अभिप्राय में तो लिमिट ही नहीं रहती, अनलिमिटेड लेना है, ये तो बहुत नुकसान करेगी। ये चीज तो श्रद्धा ज्ञान को बहुत नुकसान करेगा। अशुभ भाव तो तीव्र है ही, और रस तीव्र होने से क्या, इसमें अशुभ का रस तीव्र होने से श्रद्धा ज्ञान को, दर्शन को बहुत तगड़ा बनाएगा और ज्ञान को बहुत डिस्टर्ब करेगा। ज्ञान क्यों स्वभाव को ग्रहण नहीं करता, ज्ञान सामान्य पर से स्वभाव को क्यों ग्रहण नहीं करता? कि हमने बहुत विरुद्ध प्रवृत्ति कर दी है तीव्र रस से। हमारा पीछे भूतकाल का जीवन को देखे तो तीव्र रस से बहुत प्रवृत्ति कर ली है, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, फिर कुछ पुण्य योग से, अकल होशियारी से नहीं, पुण्य योग से आने लगा, और हम मानने लगे कि हमारी भी कोई अकल है इसमें, तो और रस बढ़ता है, रस बढ़ता है तो हमारा श्रद्धा ज्ञान इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि फिर आत्मा की समीप जाने में ये ऑब्स्टेकल्स है वो तो दूर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा प्रतिबंध हो जाएगा कि उसके दूर करने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ये हालत हो जाएगी। प्रतिबंध होता है, क्यों? ज्ञान का प्रतिबंध हुआ ना, पर पदार्थ का में उपयोग प्रतिबद्धित हुआ, प्रतिबद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो जो ज्ञान पर में प्रतिबद्ध हुआ उस निमित्त रूप से क्या होगा कर्म में? ज्ञान प्रतिबद्ध हो गए ऐसा आवरण होगा, इसको ज्ञानावरण कहते हैं, ज्ञान का प्रतिबद्धक है। स्थूल रूप से ऐसा कहा जाए कि तुम शास्त्र पढ़ो, ज्ञान वृद्धि के लिए क्या करना, सत्संग करना, शास्त्र पढ़ना, ऐसा कहेंगे। और टोडर मुझे तो वहां तक कहेंगे कि सामान्य से विशेष बलवान है, सामान्य जानकारी के हिसाब से तो विशेष जानकारी हो तो दृढ़ता बलवान ज्ञान होता है। स्थूल कथन है, सूक्ष्मता से देखे तो उपयोग बाहर निकला के जमका दूध समझो। उपयोग को बाहर जाने की मनाही है भगवान की, तो उपयोग को बाहर ले जाना ही नहीं। तुम तेरा भगवान अंदर में है, अनुभव प्रकाश में कहते हैं दीपचंद जी कि तेरा परमात्मा प्रकट विराजमान है अंदर में, इससे अधिक कौन सी चीज है जगत में कि तू इसको छोड़कर उसका ध्यान करता हो, ऐसा बताया है। तो इसके लिए लालायत तो होना पड़ता है, एक बार अंदर जाएंगे तो बार आएंगे नहीं, तो चीज कैसी होगी? तो इसकी उसकी लालच तो होनी चाहिए। अरे कोई ऐसी महा आश्चर्यकारी ऐसा कोई पदार्थ है कि अनंत सिद्धात्माएं अंदर गए, अब अनंत काल तक बाहर निकलेंगे ही नहीं, ऐसी चीज सारा जगत उनको तो दिखता है, जगत के सब पदार्थ उसके ज्ञान में झलकते हैं, फिर भी उपयोग नहीं पा रहा था। हाँ, क्योंकि उसकी महत्ता है भी नहीं, है नहीं इसलिए आती नहीं, जिसको आती है वो कल्पना से आती है, वास्तव में है ही नहीं। ये तो वास्तविकता है, उसकी महत्ता है और नहीं आती है ऐसी बात नहीं है, उसकी महत्ता नहीं है इसलिए नहीं आती है, जैसी वास्तविकता है। और आत्मा ऐसा महान है, वो वास्तविक है, इसलिए इसकी महत्ता में वो डूबे रहते हैं। ठीक है, वो सही बात है, ऐसी बात है। और सुख शांति कितनी, वास्तव में उपयोग बाहर जाए या उपयोग अंदर जाए, काय को जाता है, बाहर भी क्यों जाता है, सुख के लिए जाता है, मुफ्त में तो नहीं जाता, सुख तो है ही नहीं। यहाँ वास्तविकता क्या है कि बाहर कहीं सुख है ही नहीं, तो मार खा के फिर दूसरी जगह जाता है। क्या है कि इधर तो दरवाजा नहीं है, फिर हमने जाने की कोशिश किया तो ढीमड़ा हो गया, फिर हम नहीं समझे तो उधर दो और भटका, फिर उधर भटका, भटकते भटकते मार खाते खाते फिर समझते नहीं, किसी हालत खराब है। जहां भी उपयोग जाता है मार खाता है, मिलता नहीं है सुख, सुख के लिए जाता है और सुख मिलता नहीं है, मार खाता है दुख का फिर भी समझता नहीं। तो कहते कि अंदर आओ, अंदर सुख है, अंदर शांति है, तुमको बाहर आना ही गमेगा नहीं। पूजी बहन से के वचनामृत में पहला वचन वो लिया है, अगर तुझे बाहर में नहीं गमता है तो अंदर में गमाड। टोन कितना अच्छा है, बहुत सादी भाषा है लेकिन टोन कितना बढ़िया है इसमें। हाँ देखो ना, ये हिप्पी लोग इधर क्यों आते हैं, दे आर मल्टी मिलियनर्स, वो तो कपड़े ऐसे पहनते हैं, बाल बाल ऐसे रखते हैं, लेकिन पैसे नहीं है वो बात नहीं है, बहुत पैसे हैं उनके पास, इधर क्यों आते हैं, वहां परेशान हो गए, वहां बहुत दुखी हो गए, क्योंकि पैसा जितना ज्यादा है इतना रस बढ़ा, जैसा जैसा संपत्ति बढ़ती है रस बढ़ता जाता है, वो रस बढ़ता जाता है क्या है कि आत्मा में जो शांत रहे उसको मारता है, डिस्टर्ब करता है, चैतन्य रस को मारने वाला पुद्गल रस है, तो पुद्गल रस उसका बहुत तीव्र हो गया, इतना तीव्र हुआ, इतना तीव्र हुआ कि इधर संपत्ति अरबों में हो गई और मेंटल पीस जो है वो खत्म हो गई उसके साथ, तो पागल जैसे होने लगे वो लोग। उनकी हालत वहां ये हुई कि रात में तो उसको ट्रैंक्विलाइजर लेनी पड़े, लेकिन दिन में भी उसको कोई चैन नहीं रहे सारे दिन। फिर उन लोगों को सुना कि भारत में कोई ऐसी अध्यात्म विद्या है तो वहां शांति मिलती है, तो बेचारा मारा मारा इधर आते हैं, तो उनमें से चुल में भी पढ़ते हैं, कहीं और जगह फंसते हैं, जैन दर्शन कहाँ मिलता है, जैन दर्शन नहीं मिलता है उनको, कहाँ तो रजनीश मिल जाता है या तो कोई दूसरा महेश हरे राम हरे कृष्ण मिल जाता है, क्या बोला महेश योगी मिल जाता है, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, उनको दो चार प्रयोग करवा देते हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगता है, कषाय मन लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं कुछ है इधर, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल है, सच्ची शांति वहां नहीं है, ये हालत है। मात्रता है वो मंद कषाय का नाम नहीं है, ये दर्शनों की मंदता हुई और मुमुक्षु के योग्य ज्ञान की निर्मलता हुई, भूमिका की मुमुक्षु भूमिका की, उसी को पात्रता कहते हैं। कषाय की तीव्रता मंदता की वहां गिनती नहीं है, वो बात ही वहां नहीं है, कोई ऐसे बोलते हैं तो कषाय की मंदता की क्या बात करते हो, आत्मा की बात करो, सुधात्मा की बात करो, भाई जो विटंबना है वो मुमुक्षु दशा में है, ज्ञानी को कोई विटंबना नहीं, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता भी देखा और घर भी देखा है, अनंत काल में मुमुक्षुता सच्ची नहीं आई, विटंबना जो हुई है वो मुमुक्षु दशा में हुई है। ज्ञानी को तो मोक्ष होने वाला है ही है, कोई दो चार बहुत ज्यादा कम हो जाएगा कोई गिनती नहीं अनंत काल में इसकी, तो इमटेरियल बातें हैं। लेकिन जो तकलीफ है विटंबना है वो तो मुमुक्षु की भूमिका में, कि सच्चे रास्ते पे जाने के बजाय वो दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। कोई बाह्य ज्ञान में व्यामोहित होते हैं, कोई पानी में व्यामोहित होते हैं, मूल चीज को पहचानते नहीं तो उनको गड़बड़ हो ही जाती है। पात्रता नहीं आई, ऐसा होता है। हमारा अनंत काल में ऐसा ही हुआ है, दूसरे की बात नहीं है, ये इतिहास हमारे आत्मा का है। और गुरुदेव के अपने आत्म जागृति में जो प्रवचन आया चौथे अंक में श्रीमद् जी के वचनामृत पर, उसमें गुरुदेव ने वो बात लिया है कि द्रव्यलिंगी मुनि 11 9 पूर्व पड़ा है लेकिन उसको पात्रता नहीं आई है। वो बात गुरुदेव ने अपने प्रवचन में दिया है। जाने तो क्या हुआ, जानने से कोई काम नहीं होता, ये तो इंफॉर्मेशन है। समुद्र जैसा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान की जाति बाह्य ज्ञान की है, जिसको परलक्ष ज्ञान कहने में आया है। ज्ञान में भी दो प्रकार है, एक स्वलक्ष्य और एक परलक्ष्य। तो परलक्ष ज्ञान का मैक्सिमम लिमिट क्या, 11 9 पूर्व का है, और हमारी आत्मा ने अनंत बार किया है, दूसरे की बात नहीं है, ये हमारी आत्मा की बात है, अनंत बार किया है। त्रिवलिंगी मुनि पंच महाव्रत समिति गुप्ति 28 मूल गुण समेत, जिसके फल में 31 सागर का वैमानिक देव में जाना हुए नवमी ग्रेवक में, वो विमान में जाएंगे, और इतना ज्ञान का उगाड़ है, लेकिन दोनों फालतू, असली चीज नहीं है उसमें। नहीं, परलक्ष्य ज्ञान उसको नहीं कहेंगे, स्व में जाओ वो कहने वाला ज्ञान स्वलक्ष्य है। वो कहने वाला ज्ञान तो कहता नहीं, ज्ञान तो जानता है। कहना ज्ञान का स्वभाव नहीं है, वो तो वाणी का स्वभाव है पुद्गल का। लेकिन जो ज्ञान स्वरूप में जाने के लिए उत्सुक है, उत्सुक है, जिसमें लक्ष्य है, ज्ञान लक्ष्य भी ज्ञान के पर्याय है। तो जिस ज्ञान में स्वरूप में जाने का लक्ष्य है वो स्वलक्ष्य ज्ञान है, और जिसमें स्वरूप के जाने का लक्ष्य नहीं हो वो ज्ञान पर लक्ष्य है, वाणी से कुछ भी कहे। नौ पूर्व जानने वाला, 11 पूर्व जानने वाला बात तो शास्त्र के अनुसार कहेगा, शास्त्र विरुद्ध कोई बात नहीं बोलेगा, वो जिनागम के अनुकूल सब बात कहेगा, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं है भीतर में, पर लक्ष्य ज्ञान है, तो उनके लिए नुकसान कारक है, उनके लिए वो शास्त्र विनिवेश होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। अभिनिवेश मैंने अहम भाव, मैं जानता हूं, मुझे सब मालूम है, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैं जानता हूं, मुझे सब मालूम है, ये शास्त्र अभिनिवेश है। गुरुदेव ने ये सब प्रवचन में बहुत लिया है, जो आत्म जागृति में आजकल आ रहा है उसमें लिया है, अभी आएगा, ये अगस्त में आएगा, अब तैयार किया, अभी एक प्रवचन में करके आया। बहन श्री के वचनामृत 334 35 36, तो 334 में वो बात दिया है पूज्य बहन श्री ने, कि साधकपणे का भाव रखना, नहीं सेवकपणे का भाव रखना, क्या मैं कुछ हूँ, मैं जानता हूँ, इस बात को तुम भूल जाना। ज्ञानी के चरण में रहना हो तो इस तरह रहना है, अवड़तना अभिमान की बात नहीं, बहुत सुंदर प्रवचन है। ज्ञानी के चरण में रहना हो, बात सुनने को तुझे मिलेगी, बात की जानकारी हो जाएगी, लेकिन मैं जानता हूं ये बात लेना नहीं, मैं जानता हूं ऐसा आएगा तो सेवकपणे का भाव छूट जाएगा, सेवकपणे का भाव छूट जाएगा तो रुचि छूट जाएगी, रुचि छूट जाएगी तो क्या होगा कि मनुष्य भाव पूरा पूरा हार जाएगा, ऐसा किया गुरुदेव ने, ऐसा बात किया है प्रवचन में, बहुत अच्छा प्रवचन है।
वो अपने इंडिविजुअल केस में अपने को खुद को पूछना है, अपने आत्मा को, कि तुम इतना धार्मिक प्रवृत्ति करते हो, मंदिर जाते हो, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, जो भी करते हो, दयादान करते हो, कुछ भी, आत्मकल्याण का लक्ष्य इसमें है कि नहीं है, थोड़ा उसमें तलाश करने की चीज है, एग्जामिन करना है, तलाश करना है, भीतर में कौन सा अभिप्राय पड़ा है, क्या क्या भाव आता है, कैसा भाव आता है, लक्ष्य कहाँ पड़ा है इस वक्त, तो सबको अपना अपना देखना है। होगा या नहीं होगा वो एक तलाश करने की चीज है अपने अपने की, किसी की अपने को जरूरत नहीं है, किसका लक्ष्य पर लक्ष्य हो कोई दूसरे का तो हमें इससे कोई लाभ नुकसान नहीं है, किसी की टिप्पणी करने का भी अपने को कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अपने तो अपना काम देखना है कि हम कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, हम तो सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसको चेक करना है अच्छी तरह। नहीं है ऐसा नियम नहीं है, अगर ऐसा नियम होता तो हमारे समाज की ये हालत होती नहीं, अपने हमारी हालत कितनी धर्म दारिद्र वाली है, दरिद्रता बहुत है हमारे, ये हालत नहीं होती, ये हालत होती स्वलक्ष्य ज्ञान होता तो बहुत सम्यक दृष्टि हो जाते। गुरुदेव जैसे यानी युग पुरुष जिसको बोलने में आ सकता है, कैसे बोले, एक युग पुरुष जैसे पुरुष थे वो, कि जिसने युग पलटा किया सारा, लेकिन सम्यक दृष्टि कितने हुए, गिने गिने हुए, ये हालत क्यों हुई, ये हालत इसलिए हुई कि परलक्ष्य ज्ञान ज्यादा बड़ा है, स्वलक्ष्य ज्ञान जिसको होगा उसका तो काम हो ही जाएगा, गारंटेड है, होने वाला ही है, तो अपने को नुकसान नहीं होवे, अपने को फायदा है हो, इसलिए अपने को अपने आत्मा को चेक करने का है, दूसरा दूसरे की जाना, अपने को नहीं बात करना है, ऐसी बात लेना है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करे इसलिए स्वलक्ष्य ही होता है ऐसा है नहीं, ये बात ओपन फैक्ट है, ये बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो बिल्कुल शुभराग को भला समझता ही नहीं है, इसलिए वो उसके प्रति लेश मात्र, राग के प्रति लेश मात्र राग करता नहीं, राग होता है, राग करता नहीं है वो, लेकिन राग के प्रति तो राग उसको राग भी नहीं होता और करता भी नहीं, इसलिए निश्चय से तो उसको राग का स्वामित्व ही नहीं, वो करता भी नहीं, उसका स्वामी भी नहीं, कि राग मेरा है, इसलिए उसको लेश मात्र राग नहीं है, सिद्ध होता है कि उसको सम्यक दृष्टि को बिल्कुल राग है ही नहीं। यहां तक रखें, समय हो चुका है आज का।